19 जुलाई 82 13 दिन का स्वाधीन का गठित है। 20 जुलाई कर्म वासना के नाश के विषय में और 21 जुलाई परमात्मा परिपूर्ण है संसार का बनता है।
मैंने अभी बात कही कि कल अपने विषय चला था, उस विषय पर किसी भाई ने विचार किया हो और वो बात जची अथवा शंका रही तो वो बोले। अभी नई विषय नई बात न छेड़े। चिंता में अभाव का अभाव पूरा नहीं होता, स्वाधीनता में एक सूक्ष्म व्यक्तित्व रहता है, इस वास्ते उसमें पूरा अभाव का अभाव नहीं होता। पराधीनता मिट जाती है, पराधीनता बिल्कुल मिट जाती है। कल मैंने बात कही थी उस विषय में, देखो आज दूसरी बात बताऊं, वही बात पराधीन और स्वाधीन होना क्या है। अपने सिवाय जो दूजा है वो पर है और अपना खुद है वो स्व है, और अपने खुद का जो अस्तित्व जिससे है, जिसका अंश जीव है, वो स्वकीय है, स्वीय है परमात्मा, स्व है स्वयं, उसके सिवाय सब है पर। तो स्व के अधीन होना स्वाधीन है और स्वीय के अधीन होना भी स्वाधीन है, वो स्वाधीनता से भी विलक्षण है। अभी प्रश्न आया उस स्वाधीनता में सूक्ष्म अहम भाव रह सकता है, परंतु स्वीय के समर्पित होने पर वो सूक्ष्म अहम भी नहीं रहता, तो पराधीनता सर्वथा मिट जाती है। अपने को कुछ भी स्वीकार करता है तो वो पराधीनता बंधता है, और वो स्वीकार न करता है और केवल शरण हो जाता है उस परमात्मा के, तो उसके अभाव का अभाव हो जाता है, वो पराधीन नहीं रहता। तो अपने स्वरूप के सिवाय पर है, शरीर के आप अधीन है तो पराधीन है, कुटुंब के अधीन है तो पराधीन है, रुपयों के अधीन है तो पराधीन है, अपनी विद्या के अधीन है तो पराधीन है, अपनी योग्यता के अधीन है तो पराधीन है, अपने में कुछ भी विशेषता देखती है व्यक्ति को लेकर और उस व्यक्ति को लेकर अपना मानते हैं बड़ा, तो वो पराधीनता ही है, स्वाधीनता नहीं है। स्वाधीनता तब होगी जब व्यक्तित्व मिट जाएगा, अपने एक देशी पर मिट जाएगा, ये सर्वथा अहंकार मिट जाएगा, तब वो असली स्वाधीनता है। जब तक मैं हूँ ऐसा हूँ ऐसा हूँ ऐसा भाव है, तब तक ये पराधीनता है। तो ये स्थूल दृष्टि से कल बात बताई थी कि वस्तु के बिना हम अभाव का अनुभव करते हैं, हम पराधीन है। जैसे कल्पना करो कि हमारी एक घड़ी की चाहना हुई और घड़ी नहीं मिली तो दुख होता है कि हम पराधीन है, क्योंकि हमारे पास रुपये नहीं है, इस बार से घड़ी नहीं ले सके, हम पराधीनता का अनुभव करते हैं। और रुपया होने पर मन में आई और हमने घड़ी ले ली तो हम स्वाधीन हो गए, जब चाहे तब चीज ले लें, चाहे जिस चीज को ले लें, क्योंकि हम स्वाधीन है। तो ये बिल्कुल गलती की बात है, ये स्वाधीनता नहीं है। स्वाधीनता कैसे हुई, जब रुपये स्व है क्या आप, जब रुपये आप स्वयं नहीं है और है तो पर हुए तो रहे तो पराधीन ही। रुपया न होने पर पराधीनता का अनुभव होता था, रुपयों के होने से पराधीनता का अनुभव नहीं होता, परंतु पराधीन तो वैसी की वैसी रहती है। तो वस्तुओं के रहने पर हम अंधे हो जाते हैं, पराधीन का वो देख नहीं सकते, इतनी एक हानि और होती है। और वस्तुओं के अभाव में पराधीनता हमारे को स्पष्ट दिखती है, तो अभाव में जितना साफ पराधीनतापन दिखता है इतना वस्तुओं को होने पर पराधीनपना नहीं दिखता, तो ये अंधेरा होता है वस्तुओं से। तो पराधीन तो वैसे के वैसे हैं, जैसे रुपये न होने से पराधीन थे वैसे के वैसे ही हम रुपये होने पर पराधीन है, उससे कम नहीं है। उन रुपयों का अभिमान और पैदा होगा नया, वहाँ पराधीनता में अभिमान था नहीं किंतु पराधीनता थी। अब पराधीन तो वैसी की वैसी रही, अभिमान एक और हो गया और पराधीनता छिप गई, इतना दूषण और हो गया और फायदा कुछ नहीं हुआ रहेगी पराधीन की पराधीनी। तो पराधीन सर्वथा पराधीनता कब मिटती है कि जब हमारे घड़ी की इच्छा ही न हो, किसी वस्तु की इच्छा ही न हो, तब हम पराधीन नहीं रहते। किसी वस्तु की भी इच्छा होगी तो हम पराधीन हो जाएंगे। तो पराधीनता इच्छा मात्र से, कामना मात्र से मनुष्य पराधीन होता है, और कामना न करने से वस्तुएं वैसी की वैसी मिलेगी जो कामना करने से मिलती है। एक ये वहम है, लोग कह देते हैं कि कामना नहीं करे तो काम कैसे चलेगा, तो कामना करने से वस्तुएं थोड़ी मिलती है, कामना करने से वस्तु मिले तो दरिद्री कोई नहीं रहेगा। कामना से वस्तु मिलती नहीं है, उद्योग से मिलती है। पुरुषार्थ करो, पुरुषार्थ का तो करना ठीक है, वस्तुएं मिलती है प्रारब्ध की प्रधानता ने, पुरुषार्थ करना मनुष्यता है, परंतु कामना से वस्तु मिलती नहीं है। तो इस बात का ज्ञान होना चाहिए हमें, हमें इस बात को सीखना है, समझ लेना है, सीखने के बाद भी समझ लेना है कि वास्तव में वस्तुओं के अधीन होना पराधीनता है, और वस्तुओं की इच्छा होने से वस्तुएं मिलती नहीं है, वस्तुओं का और इच्छाओं का संबंध नहीं है कि इच्छा होने से वस्तु मिलती है। इस वास्ते ये एक बड़ा भारी वहम है, और जब तक आप स्वयं नहीं खोजोगे, विचार नहीं करोगे, तब तक इस प्रश्न को हल नहीं कर सकोगे कि इच्छा के बिना हमारा काम कैसे चलेगा। तो वस्तुओं की इच्छा न करके कर्तव्य कर्म करने की इच्छा करना ये दोषी नहीं है। कर्तव्य कर्म है ना, उसके साथ पूर्ति की बात होती है, वस्तुओं का और कर्मों का संबंध है। अभी जो वस्तुएं मिलती है उनमें प्रारब्ध कर्म की प्रधानता है, और अगाड़ी जो काम करते हैं इसमें हमारे पुरुषार्थ की, वर्तमान के उद्योग की प्रधानता है। मन कर्मों का और वस्तुओं का तो संबंध है, इच्छाओं का और वस्तुओं का संबंध नहीं। कहते इच्छा होगी तभी तो हम उद्योग करेंगे, तो इच्छा होगी तब उद्योग करेंगे, तो उद्योग करने की इच्छा अगाड़ी पाने की इच्छा, कहते पाने की इच्छा है तभी तो उद्योग करते हैं, व्यापार करते हैं, धन की इच्छा होती है तब, धन की इच्छा नहीं होती व्यापार क्यों करें, तो व्यापार करते धन की इच्छा को लेकर करते हैं, उस व्यापार से धन मिल ही जाता, नियम है क्या? ये कह सकते हो आप कि धन की इच्छा से व्यापार किया जाए उसमें धन जरूर मिलता ही है, तो ये नियम नहीं है। धन मिल भी जाता है, थोड़ा भी मिल जाता है, ज्यादा भी मिल जाता है, और घाटा लग जाता है, पास का ही चला जाता है, वार पास में वो भी चला जाता है। तो व्यापार से धन मिलेगा तो धन की इच्छा करना तो गलती है, पर काम करने की इच्छा करना, तत्परता से काम करना, ये इच्छा करना सार्थक है। कारण के ऐसी इच्छा करके हम काम करें तो तत्परता से काम करेंगे, और करने की इच्छा नहीं करे तो आलसी प्रमादी हो जाएंगे। इस वास्ते कर्तव्य कर्म करना तो मनुष्य का काम है, उसकी इच्छा भी रखो, विचार भी रखो, चिंतन भी करो, सोचो कि हमें काम करना है, परंतु फले शक्तो निबद्धते, फल ये मिल जाए, धन मिल जाए, मान मिल जाए, ये हमारे अधीन की बात नहीं, और फल की इच्छा करने बंधन हो जाएगा, ये सच्ची बात है, अकाट्य है। इच्छा करने से धन मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसमें संदेह है, पर बंधन हमारा होगा इसमें कोई संदेह नहीं। तो इच्छा करने से आदमी बंधता है, और इच्छा न करने से खुल जाता है, मुक्त हो जाता है। इस वास्ते पदार्थों की इच्छा न करके और कर्तव्य की इच्छा करो, क्योंकि कर्तव्य की इच्छा पराधीन हुए कर्तव्य के, जो कर्तव्य के पराधीन पराधीन नहीं होता, कर्तव्य करने से स्वाधीन होता है, कर्तव्य न करने से आलस्य प्रमाद के अधीन होता है। आलस्य न करे, प्रमाद न करे, तत्परता से काम करे तो पुरुषार्थी बनेगा। कहते काम करना ये भी तो प्रतंत्रता है, ये प्रतंत्रता नहीं है, और प्रतंत्रता भी मानो तो ये स्वतंत्रता देने वाली है। केवल कर्तव्य कर्म करो, फल की इच्छा मत रखो। तो हमारे भाई घबरा जाते हैं कि इच्छा नहीं रख कैसे होगा। हमने ऐसा सुना है कि ये स्वामी जी तो कहते हैं तुम इच्छा मत करो और दो नंबर का व्यापार भी मत करो, तो ऐसा करने से हमारा कैसे काम चलेगा। इस वास्ते इनका कहना गलत है, ऐसा असर होता है। तो इस पर आप विचार करो, एक कह करके गलत करके आप छोड़ दोगे तो इस विषय से लाभ नहीं होगा, और इस विषय को लेकर और मेरे पीछे पड़ जाओगे। तुम कैसे कहते हो, समझते तो हो नहीं, तुम्हारे तुमने व्यापार किया नहीं, करते हो नहीं। फिर आजकल के जमाने में व्यापार करके देखे तो पता लगे, आपको मुफ्त में रोटी मिलती है, कह देते हो कभी दो नंबर का धंधा मत करो। मैंने यदि भी ये शब्द नहीं कहा है कि दो नंबर का मत करो, मैंने कहा अन्याय मत करो, झूठ कपट मत करो, तो उसका अर्थ ये दो नंबर का धंधा मत करो। हाँ, ऐसा दो नंबर का धंधा करके आप धनी बन ही जाते हैं, ये आपके जस्ती है पूरी कि दो नंबर का धंधा करो तो लखपति करोड़पति बन ही जाएंगे, और दो नंबर का धंधा नहीं करेंगे तो हम कंगले ही रह जाएंगे, रोटी नहीं मिलेगी। ये बात आपकी जस्ती है क्या, बोलो। हाँ, तो लोभ वश करते हैं, तो लोभ तो नरकों का दरवाजा है ना, तो नरकों में जाने के लिए मनुष्य शरीर थोड़ा ही मिला है। ये केवल बातें करने की बात नहीं है, ये बातें समझने की है। आप समझो अच्छी तरह से, गहरे उतर करके इन बातों को समझो। इस समझ के लिए मैंने कल ये पाठ पढ़े, इस तरह से मैंने बात कही कि भाई हम पराधीन क्यों रहे। पराधीन सुख ने उसुख नहीं, पराधीन को सुख नहीं होता। तो स्वाधीन हम जो हो जाए, तो स्वाधीन हम कब होंगे, अपने स्वरूप का बोध हो जाए तब होंगे, अथवा जो हम जिसके हैं उस परमात्मा के शरण होंगे तो स्वाधीन हो जाएंगे। और जब तक शरीर मन बुद्धि इंद्रियों की जरूरत है, प्राणों की जरूरत है, जीने की जरूरत है, वस्तुओं की जरूरत है, ऐसी जरूरत हम अपने मन में करते हैं तो हम पराधीन रहते हैं, स्वाधीन नहीं हो सकते। चिकित्सा के बिना कैसे रह सकते, हम तो पत्थर हो जाएंगे। आप पत्थर नहीं होंगे, आप चिन्मय हो जाएंगे। जड़ की इच्छा छोड़ने से चेतन चिन्मय हो जाएंगे, परंतु ये बात हो जाएगी, अब क्या पता कैसा होगा। परंतु इस बात के लिए ये पहले अपने विचार करना है कि इच्छा के कारण से, इच्छा से क्या धन संपत्ति मिल जाती है क्या, ये सोचना है सबसे पहले। इच्छा के साथ धन का संबंध है क्या, कर्तव्य कर्म के साथ तो इच्छा का संबंध है, तत्परता से काम करो तब काम होगा, पर द्रव्य के साथ में इच्छा का संबंध है क्या, ये बात बताओ। ज्यादा प्रश्न यही उठता है कि इच्छा नहीं करेंगे तो फिर काम कैसे होगा, क्योंकि किसी इच्छा को लेकर के तो हम काम करते हैं, तो इच्छा को लेकर के ही करते हैं। ये एक आदत पड़ी हुई थी, तो पशु पक्षियों में सब में है। पशु पक्षी भी भूख लगी थी, खाने को तोड़ते हैं, प्यास लगी जल की तरफ जाते हैं। इच्छा को लेकर के प्रवृत्ति तो मात्र जंतुओं की हो रही है। अज्ञान आवृतम ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जंतवा, तो अज्ञान से ज्ञान आवृत हुआ, इच्छा करते हैं तो वे जंतु है, चाहे आकृति में मनुष्य हो चाहे पशु हो, उसको जंतु कहा है। इस वास्ते बिना इच्छा भी काम हो सकता है क्या, ऐसा प्रश्न आपके हृदय से उठे तो होंगे, हो सकता है। कैसे होगा, परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तत्व ज्ञान के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने मुक्ति के लिए, दुनिया का हित करने के लिए हम काम करेंगे, तो हेतु दुनिया के हेतु ये भी इच्छा हो गई, आत्म कल्याण है ये भी इच्छा हो गई, भगवान मिले ये भी इच्छा हो गई, भगवान का प्रेम मिले ये भी इच्छा हो गई, तो ये इच्छा नहीं है। ये समझना कि ये इच्छा नहीं है। इच्छा वह जो जड़ चीज की होती है, नाशवान की होती है, वो इच्छा होती है। और चिन्मय परमात्मा तत्व की इच्छा ये कामना नहीं है, इच्छा नहीं है, ये तो असली कर्तव्य है। इसको तो आवश्यकता कहते हैं, जरूरी कहते हैं, बहुत आवश्यक वस्तु है। और उसकी प्राप्ति के बाद इच्छा रहेगी नहीं, फिर सांसारिक इच्छा पूर्ति होने पर इच्छा और जगेगी, जिन प्रति लाभ लोभ अधिक आई, उसका इच्छा का अंत नहीं होगा। अगर प्रभु प्रेम की इच्छा है, प्रभु प्रेम मिलने पर, प्रभु के मिलने पर वो इच्छा पूर्ण हो जाएगी। ऐसे अपना बोध करना है, तत्व ज्ञान करना है, मुक्त होना है, ये मुक्त होने पर वो इच्छा पूर्ण हो जाएगी। ऐसे सेवा करना है तो सबको सुख पहुंचाना है, सेवा करना है, उपकार करना है, हम वस्तु सबकी सभी दे देना, हमारी कुछ नहीं रहे, तो सेवा पूर्ण हो जाती है, तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है। तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति मुक्ति ये इच्छा नहीं है, ये आवश्यकता है, जरूरी है, ये करना है, इसमें तो आना ही चाहिए। सांसारिक पदार्थों की इच्छा है, वो इच्छा है, वो कामना है, ये दो भेद है। नाशवान वस्तु की इच्छा कामना है, वो बांधने वाली है। अविनाशी परमात्म तत्व की प्राप्ति की इच्छा है, ये मुक्ति करने वाली है। इच्छा सर्वथा मिट जाएगी। तो जब तक नाशवान पदार्थों की इच्छा रहती है, तब तक हम पराधीन ही रहते हैं, स्वाधीन नहीं हो सकते, क्योंकि नाशवान है पर अविनाशी है स्वयं। तो नाशवान की इच्छा से पराधीन रहते हैं। तो ये पराधीनता का तत्व तो समझ लेना चाहिए, कि पराधीनता क्या है। इसके लिए मैंने कल आप लोगों से अनुवाद रखी थी। अब शंका हो तो बोलो, कल के विवेचन से, आज के विवेचन से शंका हो बोलो। नाशवान उत्पत्ति नष्ट होने वाली, ना तो वो जड़ का अर्थ है, वो ना अपने को जानते ना दूसरे को जानते, वो जड़। वो अपने को जानते दूसरे को जानते वो चेतन। बहुत ठीक है, बहुत बढ़िया। कर्तव्य कर्म क्या है हमारा? कर्तव्य हमारा वो है जो परिस्थिति सामने आ जाए, उस परिस्थिति के अनुसार काम करना, ये कर्तव्य है। परंतु उससे सुख चाहना और फल चाहना ये अकर्तव्य है। कि जो हमारे हाथ में हम कर सकते हैं वो कर्तव्य होता है, जिसको नहीं कर सकते वो कर्तव्य नहीं होता। तो कर्तव्य सामने परिस्थिति आई, वो करना तो हमारे हाथ में है, पर वो काम पूरा हो जाएगा, उसे धन मिल जाएगा, वाह वाह मिल जाएगी, बढ़ाई मिल जाएगी, ये हमारे हाथ की बात नहीं। तो हाथ की बात नहीं, उस इच्छा को छोड़ दें और जो हम कर सकते हैं वो करें, वो कर्तव्य होता है, वो परिस्थिति के अनुसार होता है। जब जैसी परिस्थिति आ जाए उसके अनुसार कर्तव्य होता है। ना सामाजिक व्यवस्था होने पर भी अनैतिक काम न करें हम, आप बाधा बताओगे, ऐसी बाधा लग जाएगी। हाँ देखो, अड़चन अगर न आती हो और पैसा अधिक पैदा होता हो तो सब संत बन जाते, सब ही श्रेष्ठ पुरुष बन जाते। देखो, अच्छा काम करने में अड़चन आती, वो दुख आता, वो तपस्या होती है। तो अच्छे काम करने से, अपना कल्याण करने से धन मिल जाए और अड़चन कोई नहीं आवे, सुखी सुख हो, तो फिर सभी मुक्त हो जाएंगे, लग जाएंगे परमात्मा में। परंतु दुखों के आने पर भी जो घबराता नहीं है, वो वास्तव में उन्नति करता है। दुख में घबराता वो लौकिक उन्नति भी नहीं कर सकता, पार मार उन्नति कैसे करेगा। हाँ, तो उसमें सोचो कि हम ऐसे आपस में कैसे बच सकते हैं, उन परिस्थितियों का अध्ययन करके और अपने प्रश्नोत्तर करो, सुलझन करें, उसमें विचार करें। ये आप कहना ठीक, नारायण नारायण नारायण, ये बहुत ठीक है। उस उधरों को रखें, विचार करके शोधन करें।
राम राम राम, यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 19 जुलाई 1982 को प्रातः 5 बजे नित्य स्तुति के बाद योग साधना आश्रम बापू नगर जयपुर में दिया गया। राम राम राम।
और अब 20/7/82 मंगलवार नित्य स्तुति के बाद सुनिए।
हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम।
हेलो स्वाधीन होने के लिए बहुत बढ़िया बात है तुम्हारी, थोड़ा सा नहीं है, महान आकर्षण, महान बात है। काम का आकर्षण और दोष दर्शन दोनों ही भयंकर दोष है, ये थोड़े नहीं है, बात खास बात है। राम 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 राम। नारायण 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 नारायण, इसके लिए खास एक बात है, अपना उद्देश्य बना ले पक्का कि इस मार्ग में हमें कभी जाना ही नहीं है, ना तो कभी किसी का दोष देखना है, ना काम के वशीभूत होना है। मेरे को तो केवल परमात्म तत्व की तरफ ही जाना है, ये संकल्प जितना अधिक से अधिक दृढ़ होगा उतना इसमें बचने के लिए बहुत सुविधा मिलेगी। काम वासना के त्याग के लिए हमें कभी परिस्थिति को छूना ही नहीं है, किसी रीति से कभी गला कट जाए तो हमें स्वीकार है, परंतु परिस्थिति को छूना हमें बिल्कुल नहीं है। जयदयाल जी गोविंद का थे, वे बहुत अच्छी स्थिति में थे, मेरी दृष्टि में मेरे परिचय में कोई साधु अथवा गृहस्थ ऐसी उनकी स्थिति का मेरे देखने में नहीं आया। पारमार्थ तत्व के जानने में वो जितने थे वैसा मेरे देखने में दूसरा कोई साधु समाज में गृहस्थ समाज में मेरे को मिला नहीं आज तक। इस विषय की खोज में मैं बहुत चला हूँ, देखा है और बहुत भटका हूँ। हमारे साधुओं में मेरे जितना भटकने वाला आपको मिलेगा नहीं, इतना मैं भटका हूँ, देखा हूँ, संग किया है, विचार किया है जिज्ञासा से। मेरी दृष्टि में ऐसी ऊंची स्थिति वाला कोई दूसरा पुरुष मेरे को मिला नहीं। उनकी बात वे कहते थे, मेरे बालकपन में भी क्रोध की बात इतनी नहीं थी, लोभ की कुछ थी और काम की बात थी, उन्होंने कहा कि मैंने सूर्य भगवान की उपासना की, निष्काम भाव के उनको मैं आचार्य मानता हूँ, जैसे शंकराचार्य महाराज को अद्वैत सिद्धांत का आचार्य मानता हूँ, रामानुजाचार्य को मैं भक्ति के सिद्धांत में आचार्य मानता हूँ, निष्काम भाव में गोविंद का जी को मैं आचार्य मानता हूँ। इतने निष्काम भाव के तत्व को जानने वाले थे, ऐसे जानने वाले बहुत कम हैं। मेरे को मिले हैं परंतु उतने भावों को जानने वाले कम मिले हैं। वे निष्काम होते हुए भी कहा कि मेरी एक कामना रही, क्या? सूर्य भगवान का स्तोत्र मैं पढ़ता था और सूर्य के देखे बिना भोजन नहीं करता था, और उनकी कामना ये थी कभी मेरे मैं कभी परस जी को छू लूं, हे सूर्य भगवान उसी क्षण मेरे को प्रश्न कर देना, ये कामना थी मेरे, उसी क्षण भस्म कर देना। और मैं पाठ करता, सूर्य के दर्शन करता और इतने जच गई मेरे हृदय में, कभी कहीं परस्त्री को छू लिया तो उसी क्षण भस्म हो जाऊंगा मैं, ऐसे मेरे भाव रहा, उससे मेरे लाभ हो। और फिर देखा तो स्त्रियों की तरफ देखना नहीं है, वो कहते थे मेरी बहन को नहीं पहचानता था मैं, वाणी से पहचानता था, क्योंकि देखना नहीं है स्त्री तरफ, केवल चरणों का दर्शन कर लेना, चरणों से ही नमस्कार कर लेना। वो चरणों के देखते ही मन हुआ कि ये जवान है, बूढ़ी है, ऐसा भाव पैदा होता, ऐसा भाव पैदा होते ही कहता दर्शन नहीं करना, चरणों का दर्शन भी नहीं करना, जहाँ स्त्री मालूम हो जाए उसको देखना ही नहीं, किसी अंग को नहीं देखना, ऐसे नियम से मैं रहा हूँ वर्षों। बहनों मेरी थी, उनसे छोटी थी, उन बहनों को भी वाणी से मैं पहचानता कि मेरी बहन है, देख नहीं सकता था, देखता नहीं था, ऐसे नियम निभाया, मेरे लाभ हुआ। ऐसे उन्होंने अपने अनुभव की बात बताई है। काम क्रोध और लोभ ये तीन नरकों के दरवाजे हैं, इनसे बचने के लिए मनुष्य को खूब सावधान रहना चाहिए। तो काम की वृत्ति नष्ट होने के लिए उन्होंने ये बात बताई, और भी कई बातें हैं। मैं देखता हूँ, विचार करता हूँ, तो ये जो संकल्प है विचार के मेरे को कभी नहीं छूना है, कभी नहीं इससे संबंध रखना है, कुछ भी हो जाए, ये जितना पक्का दृढ़ निश्चय होगा उतना ही इसमें लाभ होगा। दूसरी बात, जिन पुरुषों का वास्तव में त्याग है, काम पर विजय है, स्त्री से बचे हुए हैं, ऐसे ब्रह्मचारी है, दृढ़ भाव है जिनका, ऐसे पुरुषों के संग से बहुत लाभ होता है। मेरे से कोई पूछे तो मैं ये बात कह सकता हूँ कि अच्छे पुरुषों के संग से जो लाभ होता है वो किसी तरह से नहीं होता, भजन ध्यान कीर्तन सत्संग स्वाध्याय समाधि आदि लगा लो, उनसे भी नहीं होता। ये मेरी धारणा, व्यक्तिगत कहता हूँ, मैं उसका खंडन नहीं करता हूँ। व्यक्तिगत मेरे को लाभ जितना सत्संग से हुआ है दूसरों से नहीं हुआ, इस वास्ते मैं ये मानता हूँ कि दूसरे जितने साधन है वे साधन सब जैसे कमा करके लखपति बने, धन कमा करके वो लखपति बनना है, और अच्छे पुरुषों का संग मिल जाए तो वो गोद जाना है, आज कमले और कल लखपति, गोद चले गए। तो सत्संग करना असली वास्तविक जो वे पहुंचे हुए पुरुष है, इन तत्वों को जो वास्तव में जानते हैं, उन पुरुषों का संग करना, अपनी बातें सुनना है, उससे बिल्कुल गोद चला जाए, धनी बन जाए, जो काम होता है बहुत जल्दी। तो अच्छे पुरुषों के संग से इस दोष पर विजय होने में बड़ी सहायता मिलती है, परंतु श्रद्धा भक्ति पूर्व उनकी बातें सुनी जाए और उनके अनुसार अपना जीवन बनाया जाए और भगवान से प्रार्थना की जाए तो ये बहुत ही लाभ की बात है। नाम जपते रहें हरदम और भगत भगत पर मन से मिनट दो मिनट तीन मिनट के बाद मन से भगवान के चरणों में नमस्कार करें, हे नाथ आपको भूलो नहीं, हे प्रभु आपको भूलो नहीं, ऐसे कहता रहे, नाम जप करता रहे और प्रभु से प्रार्थना करे। तो जिस दिन हृदय से होकर के गदगद भाव से व्याकुल होकर दो मिनट तीन मिनट के बाद नाम से प्रार्थना करें और प्रभु से प्रार्थना करे, तो जिस दिन हृदय से रो करके गदगद भाव से व्याकुल होकर कोई मेरे को उपाय नहीं दिखता है, ऐसे सब तरह से निराश होकर जो भगवान की उपासना की जाए, प्रार्थना की जाए, तो बड़ा बल मिलता है, तुझे बड़ा लाभ होता है, एक शक्ति आती है उससे बड़ा बल मिलता है। एक बात दूसरी है, किसी उपाय से भी आप अगर निर्विकल्प हो सकें, उसके लिए कई उपाय बताए जा सकते हैं, तो निर्विकल्प बिल्कुल कुछ भी चिंतन नहीं है, ऐसी अवस्था में आधा मिनट अगर रह जाए, उन्नीस मिनट भर रह जाए तो बहुत ही बढ़िया बात, ऐसे अगर आप रह सके, कोई कामना ना हो बीच में, ये स्थिरता किसी कामना के लिए नहीं, लोग बोलो कोई इच्छा नहीं, केवल उस परमात्मा तत्व में स्थित होना है, जिसका गीता माया समय समय परम एक बुद्धिया दिग्विजीतया आप संस्तु मन कृतवा न केंद्र विचिंती, परमात्मा ही परिपूर्ण है, ऐसे समझ करके कुछ भी चिंतन न करे, न संसार का न परमात्मा का, स्थिर हो जाए उस परमात्म तत्व में, अथवा सगुण का ध्यान हो तो सगुण भगवान के चरणों में स्थित हो जाए मन से, वो स्थिरता अगर आपकी दो चार सेकंड की रहे, आधे मिनट रह जाए तो समय बहुत अच्छी है, वो बार बार करे, दिन में 10 बार 20 बार 50 बार 100 बार 200 बार कर ले, अब उसमें स्थिर हो जाए, अब उसमें मिनट भर रहने की शक्ति आप में आ जाए, स्थिर रहने की उस मिनट भर शक्ति से ताकत एक इतनी विलक्षण मिलती है, इस काम को लोभ आदि की वृत्तियों के ऊपर विजय करने में बहुत ताकत मिलती है, प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति के जीतने पर जीतने में बड़ी मदद मिलती है, उसमें एक सामर्थ्य आती है, एक ताकत आती है भीतर। अभी क्या है कि विचार तो करते हैं परंतु भगत पर वहाँ टिकते नहीं, विचलित हो जाते हैं, खिंच जाते हैं उधर, ये क्या है, शक्ति नहीं है, ताकत नहीं है, जैसे बीमार जादे है करके उठता है तो ऐसे चलने की शक्ति नहीं, तो लाठी रखता है एक तरफ, हाथ रखता है दीवार में तो थोड़ा थोड़ा चल सकता है, और दीवार के बिना केवल लाठी से चलना भी कठिन होता है, लेकिन मैं चल ही नहीं सकता, ऐसी शक्ति नहीं रहती, क्यों नहीं, प्राणी में एक ऐसी बात है कि काम और क्रोध और लोभ और प्रदोष दर्शन इस पर हम विजय करेंगे, विचार पक्का होता है पर समय आप गिर जाते हैं, वो शक्ति नहीं, ताकत नहीं है, करते हैं विचार पर होता नहीं है, फिर मनुष्य हताश हो जाता है। एक बात ये कहता हूँ, इस विषय में हताश कभी नहीं होना चाहिए, तो इस विषय में हमारी ही विजय होगी, इसमें संदेह नहीं है, कारण के परमात्मा तत्व की प्राप्ति के लिए ही मानव शरीर मिला है, इसका और कोई प्रयोजन नहीं है, धन कमाना भोग भोगना ये इसका बिल्कुल प्रयोजन नहीं है, भोग तो हरेक कुत्ते गधे सूर्य की दूनी में मिल जाएगा, बाल बच्चे वहां भी हो जाएंगे, परंतु परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग तो यही है, देवताओं के लिए दुर्लभ है, वो मनुष्य बनाया गया उस तत्व के लिए, तो इसमें हम सफल जरूर होंगे, इसमें किंचित मार्ग संदेह नहीं है। तो कारण के भगवान ने इसी उद्देश्य मनुष्य शरीर बनाया है, इस मनुष्य शरीर में अगर है तो ये एक ही तत्व को प्राप्त करने का अधिकार है, इसी के लिए ही मनुष्य शरीर मिला है। तो इस विषय में कभी हताश नहीं होना चाहिए, इन वृत्तियों से हम ऊपर नहीं उठ सकते, ऐसे निराश कभी नहीं होना चाहिए, खूब उत्साह रखना चाहिए, हम उनको उन्नत हो सकते हैं। और ये प्रश्न जागृत रहेगा, कैसे विजय हो, कैसे वो परमात्मा मन कैसे लगे, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते हरदम ये प्रश्न रहे, कैसे परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो, क्या करूं, कैसे जाऊं, कहां जाऊं, इसको ठीक तरह से लूं, ऐसा है हृदय में भाव अटल चाहिए। इसके सामने दूसरे सब रद्दी हो जाए, धन संपत्ति वैभव स्वास्थ्य मान आदर प्रशंसा ये सब त्याज्य है, इसलिए कोई जरूरत नहीं बातों की, वास्तव में इस तत्व को प्राप्त करना है, ऐसा पक्का ध्येय बन जाए और उसके बाद में इस मार्ग में नहीं जाना है, ऐसा रहे और सत्संग करे तो जरूर विजय होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। ये बात
एक तरफ तो हमने संकल्प की बात की कि भाई संकल्प करना है, और दूसरी तरफ जब तो उसका मतलब उसका भी भाग निर्विकल्प, तो संकल्प और निर्विकल्पता का क्या संबंध है?
तो संकल्प और निर्विकल्प एक बात है, संकल्प करना होना निर्विकल्प
को दबाया जाए,
दबाना नहीं
करूँगा
ना, 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 ना ऐसा दबाना नहीं, पर नहीं होगा, नहीं करूंगा ऐसा नहीं होगा, संकल्प है नहीं करूंगा, ये तो संकल्प है, निकलेगा कैसे संकल्प, नहीं करूंगा ये संकल्प है, करूंगा ये भी संकल्प है, नहीं करूंगा संकल्प है, मिल जाएगा तो मर्जी तो बता के भैया मैं क्षमा मांगता हूं, मेरी समझ में आप परिचित नहीं है, बसित बताएंगे इसमें कोई संदेह नहीं। अभी जो भाई संकल्प शंका करने लगा ना, इस विषय से अपरिचित मालूम दिया, अब तुम शंका करो ठीक तरह से, उसको गहरे समझ करके तुम्हारे काम पड़ा है ऐसा, वो किया है हुआ नहीं है वो मेरे से पूछो,
आपका तात्पर्य यह समझा हूँ, निर्विकल्प की स्थिति प्राप्त करने की चेष्टा करने के लिए थॉटलेसनेस आनी चाहिए,
थॉटलेसनेस आनी चाहिए, मन बोलना जानता
क्या, शून्यता आनी चाहिए, कि मन में कोई विचार आए ही नहीं, ये स्थिति को बढ़ाना चाहिए। मैं आपकी बात से ये
संकल्प नहीं करूंगा ये भी संकल्प है, करूंगा ये भी संकल्प है, ये संकल्प क्यों हो गया ये भी संकल्प है, ये कैसे हटे ये भी संकल्प है, ये अच्छा है ये भी संकल्प है, ये संकल्प बुरा है ये भी संकल्प है,
निर्विकल्प
संकल्प नहीं, तभी तो निर्विकल्प का है, तो भाई बोलता है ना कि मैं कुछ नहीं करूंगा, ये बात नहीं है, ये आपने ठीक कहा, निर्विचार वैचारिज्ञ अध्यात्म प्रसाद पातंजल योग दर्शन में निर्विचार सदचार सदकल्प निर्विकल्प ऐसी समाधियों का प्रणाम है, और निर्विकल्प है निर्विकल्प है कि सबीज है निर्बीज है, ऐसी समाधि है धर्मेक समाधि है, इनका वर्णन है पातंजल योग दर्शन में, तो वो एक विलक्षण चीज है, निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद ऋतम भरा तत्र प्रज्ञा, वह ऋतम भरा प्रज्ञा होती है, ऋतम और सत्यम विभर्ती सत्य को धारण करने वाली वहां प्रज्ञा पैदा होती है, जो सत्य तत्व है उसको प्राप्त करने की एक शक्ति आती है निर्विचार से, ऐसा लिखा है पातंजलि योग दर्शन। मैंने पहले आपके यहाँ ये बात कही थी कि रुपयों से बढ़कर के वस्तु है, वस्तु से बढ़कर के व्यक्ति है, व्यक्ति से बढ़कर विवेक है, विवेक से बढ़कर सत्य है, उस सत्य को प्राप्त करना है, ऐसा मैंने डिवीजन किया था। परंतु भाइयों के रुक रुक ऐसा समाचार आया तो रुपये के बिना काम चल ही नहीं सकता। स्वामी जी तो कहते हैं कि दो मिनट रुपया कमाओ हिम्मत, ऐसा हमारे कैसे काम चलेगा। जब आप दो नंबर के रुपये से भी रोते नहीं उठ सकते, मेरे तो बहुत दूर है भाई। आनंद की मात्रा मुझे नहीं ठहर सकता, और वो भी आप उचित नहीं समझे अपने लिए। मैं कहता हूँ आप न आवे तो इसको मैं दोष नहीं मानता हूँ, परंतु आप इधर विचार ही नहीं करते, ये तो है ही नहीं, हमारे काम की चीज नहीं थी मुझसे, तब क्या काम होगा बताओ। रुपयों के विरुद्ध बात और सह नहीं सकते, और उनके लिए पापों को छोड़ नहीं सकते। कलि केवल मल मूल मलिना, पाप पयो निधि जन मन मीना को स्वामी लिखते हैं कि कलयुग में पाप रूपी समुद्र में मनुष्यों का मन रूपी मछली होगा, मछली को जल से दूर करके व्याकुल हो जाए, ऐसे पाप से दूर करके घबरा जाओगे कि पाप ले राम 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 राम, ये नहीं होगा भाई। पाप झूठ कपट बेईमानी ठगी ठोकेबाजी ये कैसे छोटे हो रहा रहा ना, ये नहीं छोड़ते। पानी में मछली हो रहा है मन, अब बात कर निर्विकल बता दी। पाप नहीं छोड़ सकते आप, कितने हजार में बताओगे कि हम बिल्कुल झूठ कपट नहीं करेंगे।
संभव नहीं
होता, संभव नहीं, ये बात है ही नहीं। प्रयत्न करते हो इस बात के पीछे नहीं पड़ा, इस बात के पीछे करो क्यों नहीं होता, होने वाली चीज है ना, होने वाली है ही नहीं। सत्य हृदय से कमर कस के पड़े नहीं हो पीछे, पीछे पढ़ो तो एक दो आदमी आओ मेरे पास बातें करें, तुम कहाँ कहाँ क्या क्या बात आती है।
समय आप
आपका उपलब्ध
समय
उपलब्ध समय है, भजन बता देते हैं, कोई कोई समय बता देते हैं, पूछे ये समय आ
गया
समय नहीं होता, देरी होगी। मैं कहूँगा ऐसी बात या आप जिज्ञास हो तो मैं तो बहुत राजी हूँ, संतोष करूँ, कोई इस बात का चित्र
सुनूँ। नित्य स्तुति के बाद दिनांक 21/7/82 जयपुर में सुनिए,
एक बड़ी सी सारी बात है कि सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है, केवल इतनी बात मान लें। और दूसरी ये संसार दिखता है कि हरदम बदलता है, एक क्षण भी स्थिर नहीं रहता है, इस बात को दृढ़ता से मान लें। परमात्मा है और संसार नहीं है, ना सदो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत, उभय और विदिष्टो अंतस्त अनिवस तत्वदर्शी की। असत भाव न विद्यते, असत वस्तु है उसका भाव नहीं है, मन उसकी सत्ता नहीं है, और सत्ता अभाव भी सद वस्तु का कभी अभाव नहीं होता,
वो बदलता है, वो एक रस नहीं रहता। एक रस बदलता कैसे? बदलता है ये बात प्रत्यक्ष है, हमारे देखते देखते संसार बदल रहा है। और एक इसमें न बदलने वाला तत्व है, अगर न बदलने वाला तत्व न हो तो ये बदलने वाला सत्य कैसे दिखता है? तो ये जो है दिखता है, इसमें जो है एक परिपूर्ण है, उसी से ही ये संसार है दिखता। हरदम बदलने वाला है दिखता, तो है कितना विलक्षण है, तो एक क्षण भी स्थिर नहीं रहने वाले वो है जीव का तो दिखा देता है। मोदियों के लड्डू होते हैं वो चरों के आते हैं, चर है वो शुष्क ग्राम है, सूखा खुश, उस आटे को भी मीठा बना दे तो चीनी मीठी है कि नहीं इसमें संदेह है। अगर उसमें खुद में मिठास न हो तो बिल्कुल खुद फीके आटे को मीठा बना दे तो चीनी मीठी है इसमें संदेह नहीं। ऐसे प्रत्यक्ष बदलने वाले संसार को है दिखा दे कि है, वो है कितना विलक्षण है, वही है और ये नहीं है। क्यों नहीं में जा रहा है आपका हमारा बचपन वो कहाँ है बताओ? आप बता सकते हो कि ये बालकपन रहा? वो बालकपन नहीं में चला गया, अभी रहने वाली जवानी ये नहीं में नहीं जाएगी? जाएगी क्या? जा रही है। अभी ये दुर्जावस्था ये भी नहीं में जा रही है, और ये शरीर है ये भी नहीं में जा रहे, नहीं में जाएंगे। मैं वो है कभी नहीं में नहीं जाता, वो है उस प्रदेश है वो ये नहीं है। उभय और भी दृष्टों का इन दोनों के अंत को तत्व को तत्वदर्शी भी दृष्टा तत्वदर्शियों ने देखा है। तत्वदर्शी महापुरुष इसका अनुभव करते हैं, उन्होंने अनुभव कर लिया कि ये है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर मान नहीं सो परिगत देखिए है सो दीखे ना है, वो सदा है ही रहेगा और नहीं वो नहीं नहीं जाएगा, तो नहीं है वो दिखता है प्रत्यक्ष। कारण कि हम देखने की हमारी आंखें हैं, मन है, बुद्धि है, जिनके द्वारा हम देखते हैं वो नहीं के ही अन्वय अवयव है, तो नहीं के द्वारा ही नहीं दिखता है। वो नहीं से न देख करके हम है से देखें तो है से है ये दिखेगा। है क्या? अपना होनापन, बाल्यावस्था से अभी तक बदल रहा है, उस बदलने को जानने वाला है, उस है से है देखो सब लिखे गई है उसको है माने और बदले उसको नहीं माने। काम करना जितना व्यवहार करना वो नहीं में करना है, और इसलिए कोई आशा नहीं रखना है। नहीं जी क्या आशा रखे, है ही नहीं उसे आशा क्या रहे? उसे इच्छा कामना चाहना करना गलती की बात, उसे चाहे क्या हो तो बात खुद बदलता है सारा। एक रस एक रूप रहता ही नहीं, یہ کیا رہے گا کیا نہیں حل کرے گا یہ بدلتا ہے. جوار بڑھیا سے بڑھیا کرو, اتم سے اتم کرو, ہر ایک ہت کا کرو, جل پدارتھوں کے تیاگ کا کرو. اس جگ جتنا یہ تیاگ کرنے کے لیے ہی ہے, جتنے پرانی وہ سیوا کرنے کے لیے ہی ہے, ان کا اور کوئی پریوجن نہیں ہے. تو جتنے پدارتھ ہیں وہ سب سے اٹھ جا رہے, تو جاتے ہوئے وہ ہمیں اپنی مرضی سے لگا دے, بنا مرضی جانے میں دکھ پائیں گے ہم, اور ہمیں جو لگائے گا تو بڑا آنند ہوتا, پریشان بھی بڑا سکھ ہو. تو یہ سیوا میں لگانے کے لیے ہے, اور ہیون کی سیوا کر دینا چاہیے کہ یہ بھی رہیں گے نہیں, اور جن سے سیوا کروں وہ بھی رہنے والا ہے نہیں. تو سیوا کر کے لابھ لیں, اپنا اس کے سمبندھ چھوڑ کر کے مہان آنند میں مگن ہو جاؤ. بات اتنی یہ پرواہ ہے, اس پرواہ میں پرواہ پراد اور ہے اس میں ہے گورب. بس پورنتا کم سے کم آپ نے کبھی کمی کری نہیں, ایسے پرماتم تتو میں نتیہ نرنتر ہماری استھتی ہے. تو میں وہی ہوں جو بالکپن میں تھا, اور شریر سنسار وہ نہیں ہے جو پہلے تھا. پہلے تھا وہ نہیں ہے تو اب ہے وہی نہیں رہے گا, اور پہلے تھا وہی ہے تو وہی رہے گا. تو سنسار میں پرماتما ہے اور شریروں میں اپنے سے بھی ہے, ہے ایک ہے اور شریر سنسار ایک ہے. تو شریر سنسار وہ سنسار کی سیوا میں لگا ہوگا ہے, یہ لگانے کے لیے ہے, اور ہے اور ہمیں یہ رہنے کے لیے ہے. یہ لگے گا نہیں جائے گا نہیں ہے, اسی کو ہی ہے. غلطی ہی ہوتی ہے جو جا رہا ہے اس کو ہے مانتے ہیں, اس کو رکھنا چاہتے ہیں, اور ہے اسے لینے ہی جاتے, اس کے جنوب ہو رہے ہیں, اس کا نام غلطی ہے. اور ہے اس کو رکھے اور نہیں ہو رہی ہے. کتنی سرل سیدھی اور مارنے کے بڑھیا ان سے درجے کی ہے, اور بڑی سیدھی ہے, اس میں کوئی شنکا ہو تو بولے.
میرے گھر کل ہے پوچھ میں بات کہہ دوں گا. یہ ان سنگا کیا ہے, لوگ کہتے ہیں مت مانو, لوگ کچھ بھی کہو, لوگوں کہہ رہے میرے گھر ان دونوں آپ کو بڑھیا دی کہ وہ مان لو. اگر لوگ کہہ رہے مان لا ہے تو میری بات چھوڑ دوں, اور میری بات چاہیے لوگوں چھوڑ دوں, دودھ ہی دو بات ساتھ نہیں پھٹے گی. اس بات کا آپ کو پسند آئے مان لو, میرا کوئی آگرہ نہیں ہے. آپ کہے کہ ہم بدلیں, سنسار نہیں بدل رہا ہے. یہ کہتا ہے جیسے بچپن سے, بچپن کی بات ہے, آپ کرتے تھے نہیں ہم تو ایسے چکردار کھڑے کھڑے چکردار رہے, چکر کاٹتے کاٹے کاٹے گر پڑتے, تب پھر سنسار اتل پتل ہو رہی ہے, اتل پتل ہو رہی ہے. ہم پڑھے ہیں تو اتل پتل ہو رہی ہے. بات بالکل جھوٹی, ہم تو ہے جیسے اتر پتل پتی ہوتی ہے, ہم ایسے گھومتے تھے وہ گھومنے کی سنا ہے. ایسے آپ بھرم بھرم میں پڑے ہوتے ہیں تو ہم جو رہتے ہیں یہ بدلتا ہے, پھر دکھاؤں تو مجھے یہ بھی ہوتا ہے. बालक भ्रम भ्रम ही ग्रह आदि बालक भ्रम का है घर घर आदि नहीं बदलती घर भ्रम तेजी गोल चक्र की गलती अपना चल गया चक्र में चढ़ गया ऐसे संसार चक्र में सीधा उदीघता है ऐसे आप खुद चक्र में चढ़ गए इस बार संसार बदलता दीघता है और अपने उपनिषद नहीं दीघता तो ये तो भ्रम से है वास्तविक क्या है इन दोनों में आपको जो वास्तविक दी वो ले लो जहां आपको वास्तविकता दीखते हो उसी बात मानो और वास्तविक से छोड़ो मेरी बात छोड़ दो तो नाराज नहीं होगा और माने तो राजी होगा
जो उपाय बताओ तो साधन बताओ ऐसा मानने में जरा दिक्कत आती है परेशान
उपाय है जितनी चीजों को खर्च करो दूसरों के हित में ये असली उपाय संग्रह पकड़ को तीन समय में आवेगी नहीं उम्र खत्म होने पर भी और उदारता से कुटुंब के लिए दूसरों के लिए जो है अपने कारण खर्च करो धन हो संपत्ति हो गरीब हो विद्या हो बुद्धि हो योग्यता हो अधिकार हो और उनकी सेवा में लगा दो प्रवाह रूप से और समझा वो पकड़ोगे समझ नहीं आओगे उन भी बात को पकड़ ली उस बात नहीं देखा छोटी बात तभी समझ में आवेगी उनकी बात को छोड़ दो सिद्धांत बना लोग हमारे पास जो कुछ है वो सेवा करने के लिए है ऐसा पक्का विचार के रखने के लिए नहीं है जैसे दान देने के लिए घर में चीजें लाकर रखते हैं भाई अधिक मास में देना है ये सोमवती अमावस्या को देना है ये तो व्यतिपात में देना है ऐसा भाव होता उन चीजों पर मोह नहीं होता नहीं दिया ऐसा नहीं होता ऐसे ये सब चीजें छोड़ना है ये देना है ये सेवा में लगाना है ऐसा भाव रखो पक्का लग जा न लग जा मर जाओ कोई हल नहीं तो ये बात समझ आ जाएगी और ये है यथावत निश्चित ऐसे अगर उसमें पकड़ोगे तो बातों को मिलकर आप भी सीख जाओगे का अनुभव नहीं होगा बिल्कुल पक्की बात एकदम और इसमें आपको विश्वास करके देखो करके देखो न और मेरा कान पकड़ो तो गलती करी हमारे उद्योग का भी
उसमें कुछ उपार्जन होता है और उसके बाद वृद्धावस्था होती है तो
मनुष्य
की
उपार्जन
की
चिंता
तो रहती नहीं
तो
वो अपनी वृद्धावस्था के लिए कुछ
संग्रह रखती है मैं कहूँ संग्रह छोड़ने का कहता ही हूँ बाबा मेरे बात सुनिए मैं कहूँ ये सोमवती अमावस्या में कह रहे जो छोड़ने का है ये कहा मैंने सब खर्च को नहीं कहा ये देने का है ये छोड़ने का है ये रखने का नहीं है रक्षा करो भी फैंको मत नष्ट मत करो परंतु ये रखने का नहीं है मेरा नहीं मेरे लिए नहीं है ये निश्चय करो ये कहना ये मेरे काम आने वाला नहीं ये मेरा नहीं मेरे क्या आप जो सत्स्वरूप हो वो आपके काम आने वाला नहीं सही काम आता कुटुंब काम आता आने दो काम बदला नहीं है हमारे काम में आने वाला नहीं ये निश्चय करो इस वास्ते उपार्जन उपार्जन करो है जगह अच्छी तरह सद्य करो कोई बात है नहीं इस पर डेरा मत लगाओ ये कुछ हमारा आधार है निहाल करेगा ये बुद्धि उठा दो इसमें बाधा बोलो एकदम ठीक निश्चित बात उपयोग की दृष्टों का अंत दृष्ट अंत का अनुभव किया है न तो त्यागता ऐसा नहीं रहा है त्याग दिया ऐसा नहीं था दोनों का तत्व देख लो ये समझो तत्वदर्शी भी तत्व क्या है ये परिवर्तनशील है स्वयं परिवर्तनशील नहीं है सही बदलने पर आप नहीं बदलते हो, संसार बदलने परमात्मा नहीं बदलते हैं, परमात्मा आप एक हैं, शरीर संसार एक है। शरीर को संसार की सेवा में लगाओ, संसार को अपनी सेवा में लगाने की आशा छोड़ो और भगवान मेरे ऊर्जा इसको छोड़ो, भगवान का मर्जी छोड़ो। मैं छोटा भगवान का हूँ, से संसार संसार का जो पर है वो सेवा के लिए है, मैं उनके लिए हूँ, इतनी बात। इसमें कोई कठिन का अर्थ में बोलो
भगवान के लिए,
मैं भगवान का हूँ नहीं मान लो, संसार संसार के लिए नहीं मान लो, आज है मान लो। मेरी बात ऐसी विलक्षण है, मैंने सुनी है, संता से पुस्तकों में पढ़ी है, आप जितना मान सकते हो उसमें उतना मान लो, आगे उसको मत, इतना हम समझते हैं, इतना गौर शुरू किया, आगे सुन में आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ये बात है कि ये संसार का अंश है हमारे पास, तो संसार का अंश है उसके मतलब में संसार को चाहते हुए न होकर संसार की सेवा में लगाना है ये, और मर्यादित छोड़ना है और जीते भी छोड़ना है, जहां अस्पताल है वहां खर्च करना है इतना, और रखना अपने आप को उसे, तो इतना आधा समझ लो। परमात्मा को बोले हम सुनने आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। असत को सत मानने से ही सत के मानने में आग लगी है, ये आग अड़ जाएगी उस दिन नहीं जाएगा।